ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الحمد للہ علی نعمۃ الاسلام وکفا بها النعمۃ، الحمد للہ علی نعمۃ الولایۃ وکفا بها النعمۃ، الحمد للہ علی نعمۃ الہدایۃ وکفا بها النعمۃ، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد۔ الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیے۔ خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، نعمت ولایت محمد و آل محمد پر، اور نعمت ہدایت پر۔ اس کے شکر گزار ہیں بہت زیادہ، دل کی گہرائیوں سے اور فکر کی اعلیٰ بلندیوں سے کہ جس نے ہمیں 1440 میں توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان کے پاک اور مطہر خون، ان کے اعلیٰ مقصد اور ان کے باوفا صحاب کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں۔ الحمدللہ۔ یہ جملہ جو میں بار بار تکرار کرتا ہوں، مجھ سے اس مدت میں صرف ایک ہی شخص نے پوچھا، کہا اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ علماء ایسے نہیں کرتے، خطبہ پڑا عربی کا اور تقریر شروع ہو گئی، آپ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے خوشی ہوئی بلاخر، البتہ میں دو کام کر سکتا تھا، یا خوش ہوتا یا پریشان ہو جاتا کہ اتنے لوگوں میں ایک عقل مند ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کب کم از کم کسی نے تو پوچھا نا، پازیٹیو ہی ہے، نگیٹو ہے ایک ہی پوچھنے والا رہ گیا، نگیٹو بھی دیکھا جاتا ہے اسی کو، لیکن نہیں، الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ ریپیٹیشن کا ایک ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اگر وہ چیز موجود ہے اس کو ریپیٹ کرنے سے اس میں خیر ہے مومنین کے لیے، نفع ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ان فإن الذکر تنفع المؤمنین، تذکرہ دوبارہ سے یاد دہانی مومنین کو نفع پہنچاتی ہے، ادھر بھی اسی طرح ہے، یہ جملے جو ہیں در حقیقت لائن صحیح کرنے کے لیے کہ اصل سید الشہداء سے متعلق کیا کیا چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، مقدس خون، اعلیٰ مقصد، باوفا اصحاب، یہ ساری چیزوں کو کور کر لیتا ہے، ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ تین مست ہیں، لازمی ہیں، یعنی کم از کم ایک محرم و سفر میں ان پہ میں ضرور غور کروں، سوچوں، اور ان تین کو نعمت تصور کروں کہ مجھے سوچنے کا موقع ملا اور خدا کا شکر ادا کروں کہ اگر جو ہے وہ الا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں خدا مزید کر دے گا، اردو کے ترجمہ میں لکھا ہوا خدا تمہیں مزید دے گا، نہیں کہیں نہیں لکھا ہوا مزید دے گا، یہ مادی سوچ ہے، مزید دے گا، 10 روپے خرچ کیے 100 روپے دے گا، مادی ہے، لازیدنکم تمہیں مزید کر دے گا، تمہارے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی، تمہاری فکر میں، دیکھیں جسم میں وسعت پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے، نہایت انسان شہید دسترخوان بن جاتا ہے، معاویہ کی طرح شہید ہے دسترخوان پہ، شہید کھا کے مر گیا تھا بچارا لیکن اگر نیت میں وسعت آئی، فکر میں وسعت آئی، اگر قلب میں وسعت آئی، یہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی میں مثال کے طور پہ اب میں اپنے دسترخوان پہ دوسروں کو بھی برداشت کروں گا، شیمر نہیں بن جاؤں گا، میں اور یہ بوٹی جو بڑی والی ہے میری ہے، خبردار کسی نے کھائی، ورنہ میں اپنی دو دھاری تلوار نکال لوں، دو کیا اس کی تو تین دھاری والی تلوار تھی، تین دھاری تلوار جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں، کانٹا، تین دھاری تلوار کانٹے کو کہتے ہیں، کانٹا کھانے کے لیے، اسے تلواروں سے کیا واسطہ، کانٹے سے واسطہ ہے، خوراک پیٹو ہے، تبھی تو حضرت امیر کا دوست نہیں بن سکا، رفیق راہ نہیں بن سکا، دوست میں، محب میں اور محبوب میں کوئی چیز تو ملنی چاہیے نا، اتنی میرے اور آپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، مجھے پلاؤ پسند ہے، مولا کو فاقہ پسند ہے، کیسے دوستی ہوگی ہماری، میں کہتا ہوں آج پزا ہٹ چلیں، ختم ہوگی مجالس، آج پزا ہٹ ہونا چاہیے، رات کو 2 بجے ہوگی، مولا کہتے ہیں 2 بجے، 2 بجے تو میں اٹھتا ہوں اور آسمان کو دیکھ کے کہتا ہوں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب یا لأولي الأبصار، صاحبان بصیرت، مولا صاحبان بصیرت کو پسند کرتے ہیں، مولا کے لیے انٹری ٹیسٹ نیت ہے، جو نیت میں مولا کے میرٹ پہ پورا نہ اترے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، مولا اس میں توجہ ہی نہیں دیتے، کتنے خط لکھے معاویہ کو، آؤ معاویہ، آؤ میں تمہیں نصیحت کروں، آؤ میں تمہیں ہدایت دوں، آؤ ہمارے ساتھ بھی دسترخوان، کبھی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، کیوں نہیں کیا، آئے خلاف عدالت ہے ایک امام کے نہیں ہے، یا امام آپ سب کے امام ہیں، معاویہ کے لیے آپ نے شفقت کا پہلو کیوں نہیں رکھا، مولا بڑے آرام سے آپ کو، شفقت اس کو دکھائی جاتی ہے جس میں حس ہو، وہ پتھر ہے، بل ہم ازل، پتھر سے بھی بدتر ہے، پتھر میں سے پھر بھی چشمہ پھوٹ آتا ہے، اس میں سے تو وہ بھی نہیں پھوٹے گا، یہ تو اگر پھٹا تو گندگی ہے، غلاظت اور ہوگی، ये तो उस जानवर की तरह जिसे नहलाया जाए तो और ज्यादा नजिस हो जाता है, है ना। दो जानवर जिनको अगर नहलाया जाए तो और ज्यादा नजिस हो जाते हैं, जब तक नहाए नहीं थे तो कम नजिस थे। अंदाजा लगाए कितनी बदकिस्मती है जानवर के लिए। कुत्ता और सुअर जितना नहलाए मांझे इनको, सारे हेड एंड शोल्डर उसके ऊपर लगा दें। इश्तहार वालों को वो भी दिखाना चाहिए, इसको धो सकते, इसको पाक कर सकते हो। बाज जो है ना वो ये वाला टब्बर पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये खतरनाक सोच बाज अनपढ़ अल्लामे जो हैं, अल्लामे उनके ज़रिए जो है वो हमारे मेंबर पे भी आ गई। सबसे मोहब्बत करो, सब पे शफ़क़त, फ्रेंड ऑफ ऑल एनिमी ऑफ नन, और दिल में सबके लिए नफरत करते हैं, सब झूठ है। ये क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा आ गया। नहीं जी हमने हेट की बात ही नहीं करनी, किसने सलीब पर चढ़ाया मिसाल के तौर उनकी बात नहीं करनी, कौन हज़रत ईसा का मुखालिफ था उन पर बात नहीं करनी, हम हज़रत ईसा की सिर्फ गुण गाएंगे। यसू हमारे लिए सलीब पे चढ़ गए, हमने क्या किया यसू के लिए, आपने क्या किया। हज़रत यसू मसीह के पीछे चले, उनके हवारियों को फॉलो किया है, नहीं तो फिर नहीं, चाहे हम अच्छे हों या बुरे हों हज़रत यसू आएंगे और ज़रूर ज़रूर हमारी शफात करेंगे। ये शियों में भी पाए जाते हैं, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो रब जाने थे हुसैन जाने, हमने क्या नमाज पढ़नी, वो तो आइमा के लिए नमाज वाजिब थी, हमारे लिए थोड़ी वाजिब है। आइमा में नक्स था, उनको उबूदियत के ज़रिए अपना नक्स पूरा करना है, हम तो माशाल्लाह कामिल हैं। ऐसा ऐसा फ़लसफ़ा आपके सामने झाड़ेंगे, आइमा के ऊपर तो कोई इमाम नहीं था ना, ये मैं सब बहस कर रहा था। एक शख्स कहो तो कामिल है, तो मैंने कहा नमाज क्यों पढ़ते हैं, आया किसी इमाम ने नमाज छोड़ी, अब वो चुप है, नहीं कह सकता। अगर कह के नमाज जोड़ी कुरान भरा हुआ है आयात से जो तारीख सलात की जो तारीफें करता है, नहीं कह सकता, फंस गया है। मैंने कहा पर तुम क्यों नहीं पढ़ते, फिर तुम क्यों जाके मेंबर पे बैठ के कहते हो कि जी नमाज की कज़ा है, अज़ा की कज़ा नहीं है। किसने कहा नहीं है कज़ा? मैं कहता हूँ है, ना करो मजलिस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से आइमा नहीं कर सके, इमाम ज़ैनुलाबदीन नहीं कर सके, इमाम बाकिर नहीं कर सके, इमाम सादिक ने छुप के की, इमाम रज़ा को मौका मिला अलल ऐलान किया, बंदोबस्त किया। तारीख तो वैसे ही नहीं पड़ी, ये ख़तरनाक सोचा है। फ्रेंड ऑफ ऑल एनिमी ऑफ नन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हज़रत अमीर के दुश्मन ज़्यादा थे दोस्त कम थे, सबके साथ यही हुआ है। रसूल आज़म इस्लाम के दोस्त ज़्यादा है दुश्मन, अगर दुश्मन ज़्यादा दुश्मन दोस्त ज़्यादा है तो मक्का क्यों छोड़ा, मक्का इसीलिए छोड़ा कि दोस्त दुश्मन ज़्यादा है, जंगें क्यों हुई इसलिए कि दुश्मन ज़्यादा हैं, फिर भी ये सोचने को तैयार नहीं। असल ये सिर्फ एक चीज़ के दुश्मन है कि सोचे कोई ना, इन चीज़ों के ऊपर कोई भी ना सोचे कि हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, आज़ादारी का हदफ क्या है, खून हुसैन ज़मीन पर गिरा क्यों, इस पर ना सोचो, बस गिर गया इस पर रो, जी भर के रो। खुदा बिलाकर जो है वो जब देखेगा ओए होए जन्नत में तो कोई जा ही नहीं सकता, चलो फिर मजबूरन दरवाज़ा खोल दो। मैंने कहा ये कोई पंजाब गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान नहीं है धरना दे के बैठे हुए हैं, हम भी जाके धरना दे के बैठ जाए, बेनमाजी बेअमल बदअमल बग़ैर हिजाब के बग़ैर दाढ़ियों के, हम भी देखते हैं हुसैन कैसे जाते हैं, हम यहाँ पे पुल बंद करके जैसे EPC आजकल की तैयार हो रही है, वो APC वाले रोक सकते हैं, खुदा मजबूर नहीं है, तो बैठे रहो। मैंने जन्नत में दाखिल करना है, पुल से थोड़ी गुजारना है किसी को, कई पुल है, हो सकता है जल्दी हुक्म दे दे, और खुदा की पुलिस जो है वो हमारी इंतज़ामिया की तरह थोड़ी है, दो नंबरी कर जाए, जब हुक्म ना दिया हो गोली चलाने को तो गोली चला देते हैं, जब जो है वो सिर्फ कहा पकड़ो तो जो है वो गायब कर देते हैं। इस तरह तो खुदा का निज़ाम तो नहीं, खुदा तो फ़िलहाल देख रहा है, तमाशा कर रहा है, देख रहा है ये क्या करते हैं, जिनको मैं इख्तियार देता हूँ ये क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं या नहीं। अभी तक पाकिस्तान में मिसयूज़ ही हुआ है, हम भी करते हैं, آیت اللہ بہجت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، کہا ہم سب میں ایک فرعون چھپا ہوا ہے، بس ابھی تک ہمارا مصر ہمیں نہیں ملا، مصر مل گیا پھر پتہ چلے گا. کسی کو آپ اختیار دے کے پاکستان میں دیکھ لیں، مسجدوں اور امام بارگاہوں کی حالت دیکھیں. جیسے ہی حضور کو صدر انجمن بنایا، یہ مولوی تو ادھر سے پھٹکاؤ، بہت نمازیں پڑھتا ہے، یہ بڑی مصیبت ڈالی ہوئی. تقوی تقوی تقوی، کوئی ایسا لے کے آؤ. رات کو ہم جائیں تو آرام سے سوئیں، کوئی دن بھر کی جو مشقت ہے وہ انرجی ساری نعروں کے ساتھ خالی ہو جائے، بڑا مزہ آتا ہے. مجھے ایک بڑے اچھے جوان نے آ کے کہا، آغا آپ تھوڑے سے فضائل اس میں فضائل ایڈ کر دیں، یہ تھوڑے سے نعرے ہم اور بھی لگوائیں گے ان سے تین چار، تاکہ انرجی ان کی بوسٹ اپ ہو جائے، وہ خالی ہو جائے گی، پھر توجہ سے آپ کی بات سنے گا. میں نے کہا اب جو یہ تم نے کہا ہے نا، اب تو میں بالکل ہی نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا آپ ضد ضد کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تربیت کر رہا ہوں.
آپ کو ایسا ہی ہوا تھا؟
مجھے پتا، آپ کو بتانے کی ضرورت. اور رش دیکھا تھا آپ نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امام کتنے خوش ہوئے ہوں گے رش کو دیکھ کے، رش کو دیکھ کے، صرف رش کو دیکھ کے. کیونکہ اگر یہ لوگ سدھر جائیں، میرا آنا کتنا قریب ہے. لیکن میں کبھی متاثر نہیں ہوتا. بڑی بڑی جو ابھی لوگ یہ تصویر اور تصویریں دیکھی ہیں، میں نے کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اسی کی بڑی بڑی تصویریں جمع ہوئی ہیں. 15,000 خط لکھے گئے تھے جن کا چہلم منا رہے ہیں، 15,000 خط تھے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے. ہماری فصل تیار ہو گئی ہے، ہمارے یعنی ہم پیسے والے ہیں، آپ آئیں، ہمیں ایک ولی اور حاکم چاہیے، ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، وہی قاتل امام بنے. اس لیے ہمیں ایک جو درس سکھائے گئے کہ دھوکہ نہیں کھانا. اب ہم نہ جمعیت کم ہوگی تب بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، زیادہ ہوگی تب بھی دھوکہ نہیں کھانا. ایک اگر انسان جو ہے وہ ہزاروں میں سے سدھر جائے، ارادہ کر لے، ایک انسان بھی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے. تبدیلی والی حکومت میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو عمران خان ہی نظر آ رہے ہیں نا، باقی تو ہیں اچھے، میں نہیں کہتا ہوں اچھے نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن انقلابی سوچ رکھنے والا وہی ظاہر میں وہی ہے. اور اکثر کہہ رہے ہیں وہ چلا گیا تو کیا ہوگا. یہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو صرف وہ کرتے، سسٹم تیار نہیں کرتے. ہم اس وقت یہ تبدیلیاں، ان کو ہم تبدیلی نہیں، قیمت اوپر چلی جائے نیچے آ جائے فرق نہیں پڑتا. ہم دیکھ رہے ہیں قانون سازی کیا کرتا ہے. آیا الیکشن میں قانون بنتا ہے جس کو سزا ہوگی وہ اسمبلی میں نہیں جا سکتا؟ آیا ایک میرٹ کے لیے مجلس میں پارلیمنٹ میں وہ جائے جس کے پاس کوئی دماغ تو ہو، جس کو پتا تو ہو کہ قانون پڑھا تو ہو اس نے، قانون کا ٹیسٹ تو لیا جائے اس سے، مختلف امینڈمنٹس کیسے کی جاتی ہیں یہ گزرا تو ہو. ایک میں نے تو مشورہ یہ بھی دیا تھا ایک دوست کو، میں نے کہا ایک چھوٹی پارلیمنٹ کے ساتھ اکیڈمی بنا دیں، بے شک اسکولوں میں نہ جائیں یہ لوگ، ویسے بھی کہاں جاتے ہیں، آرام سے ڈگری مل جاتی ہے گھر پہ، ایگزیکٹ زندہ باد وہاں سے آ جاتی ہے، وہ تو پاکستان کے حیوانات کو بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے. تو ان کو ایجوکیٹ بے شک نہ کریں، لیکن انہیں کم از کم کچھ نارمز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے جا کے اسمبلی میں بیٹھ کے ہلا گلا نہیں کرنا. خدا گواہ شرم آتی ہے انسان کو کہ اس طرح تو ہمارے جو ہے وہ ایک اچھے اسکول اور معاشرے میں عام ایک انسان نہیں کرتا، جو یہ بظاہر وہ لوگ ہیں کہ جو ہائیسٹ جو ہے ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی، کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، حیوانات سے بھی بدتر ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں، ہمارے ایک شخص کو لیٹ لے کے آئے ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، تم نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کہاں واک آؤٹ. جو بھی واک آؤٹ کرے اس کو اندر کر دیں، فوراً اندر کر دیں، جو بھی چھٹی کرے اندر کر دیں، مجرم ہے قوم کا، اور اس دن کی تنخواہ کاٹے ان کی، سارے سیدھے ہو جائیں گے. ساری گیم ہی پیسوں کی، ہمیں بھی پتہ ہے ساری گیم پیسوں کی. فنڈز نہیں مل رہے، اپنے بھی اپنا راز ہوئے، ظاہر ایکسٹرا فنڈ ملتا تھا تو پیچھے
فیملیاں چلتی تھی، خرچے ہوتے تھے، جو دوڑے لگائی تھی جنہوں نے لیکچر، یہ فرسودہ اور بیمار نظام ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیوں ہمیں نظام میں ولایت چاہیے کہ جہاں پہ جو شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے اس میں حوث نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ کیوں ابوذر صرف شخص چاہیے، ہر کام ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابوذر والا میرٹ ہو، سلمان والا میرٹ ہو، زمین پہ بھی ایک خچر کے اوپر بیٹھ کے بھی چلا جاتا ہے حکومت کے لیے، خچر کو بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ پورے
بعض کام بہت اچھے کیے ہیں گورنمنٹ نے واقع، ہر لوگ مذاق اڑا رہے تھے اس کے، جی ہیلی کاپٹر 50 روپے مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میرے نظر میں بڑا اچھا کام کیا۔ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی ایسی ایسی کہ دنیا ہمارا مذاق اڑاتی تھی، یار تمہاری تو گورنمنٹ بڑی امیر ہے، ہم تو جو ٹیکسیوں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کو ٹیکسی میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی گارڈ اس کے ساتھ نہیں ہے، 2 بچے اور بیوی ہے۔ میں نے پوچھا اپنی گاڑی نہیں ہے، کہا ہے، لائسنس اس کا ضبط ہو گیا۔ پرائم منسٹر آف آسٹریلیا، اندازہ کریں، اس کے 3 ڈی میرٹ پوائنٹس ملے تھے، بند ہو گیا، اس کا کینسل ہو گیا تھا لائسنس، ٹیکسی پہ آیا۔ جس مارٹ میں ہم گئے شاپنگ کرنے کے لیے ادھر ہی وہ بھی تھا، میں نے کہا بچوں کوئی 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 پرائم منسٹر کہاں تصویریں کھینچے، میں نے کہا کیوں کھینچے، میں نے کہا یہاں اس کو تصویر میں اپنے یہاں بٹھا لو اور ایکسپیکٹ یہ کرنا اپنے پرائم منسٹر سے، اس طرح سادہ ہو، لوگ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں بڑی معمولی، نہ کوئی ہائی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، نہ ایم آئی کی ضرورت ہے، نہ آئی ایس آئی کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، عام آدمیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں میں حیرانگی کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تو شہنشاہی نظام ہے، جس کے خلاف امام حسین میدان میں اترے تھے، شہنشاہیت کے خلاف، اسپیشل ٹریٹمنٹ کے خلاف، علماء کو علیحدہ بٹھا کے کھلانے کے خلاف۔ کیوں ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو، جو دوسرے کھا رہے وہی ان کو کھلاؤ، نہیں جی حضرت عالم کے لیے چھوٹے بکرے کا مزیدار بڑا زبردست قسم کے جو ہے وہ گوشت ہونا چاہیے، باقیوں کو جو ہے بڑا کھلاؤ یا گوشت ہی نہ کھلاؤ، دال کھلا دو۔ کیوں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتے علماء، علیحدہ کمرے میں کیوں؟ اور یہ بری عادتیں کون ڈالتا ہے؟ بانی، اور بانی پڑھنے والے سے زیادہ قصوروار ہے، جو پڑھ کے گیا وہ قصوروار نہیں، جس نے پڑھوایا وہ زیادہ قصوروار ہے، یاد رکھیے۔ جیسے ثواب میں بھی ہے، اگر اچھے کو بلائیں گے اور وہ صحیح پڑھے گا تو بانی کو بھی ثواب ہے، اس کو بھی ثواب ہے، سننے والے کو بھی ثواب ہے، لیکن اگر الٹ ہو گیا، سننے والے کو بھی گناہ ہے جو برداشت کر رہا ہے، جس نے نہیں انل المنکر نہیں کیا، بعد میں کر رہا ہے، فائدہ کیا؟ حسین کے بعد بیٹھ کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ یزید عمر اسعد کی حمایت نہیں کرنی، تو مر چکا ہے، اب کیا حمایت کرنی ہے؟ اب حمایت کرنی ہے، اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، عبرت۔ اب ہم کربلا سے عبرت حاصل کریں، 40 عبرت کا دن بھی ہے، 40 کربلا کی شہادت کے جوان ہونے کا دن بھی ہے، 40 درس استقامت ہے، صبر ہے، حوصلہ ہے، خدا پر ایمان ہے، اور وہ بھی حضرت زینب کا، کسی ایک لمحے میں ہمت نہیں آ رہی، کسی ایک لمحے میں شکایت نہیں کی، کہا بس ہو گئی، کتنا سفر، کتنی پریشانیاں، خدایا میں علی کی بیٹی جو بد دعا کرنے لگی ہوں، ہاں آپ کے خیال میں اگر کرتی تو کیا ہوتا، نہ سنتا خدا، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے کام کے لیے نکلی، اور یہ کام ابھی ادھورا ہے، اور خود اپنی شہادت کے لیے کربلا میں تیار ہیں۔ اگر بات کا فریضہ جو میری نظر میں شہادت سے زیادہ دشوار تھا، کار زینبی واقعا کار حسینی سے دشوار تر ہے، جیسے وہ کہتے ہیں جیسے جیسے شہید ہو رہے تھے، جو آخری شہدا ہے یہ پچھلے شہدا کا بھی تو غم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر ایک اپنے ساتھ پریشانی یہ لے کے جا رہے ہیں، میرے بعد بابا حسین کا کیا ہوگا، لے کے جا رہے ہیں، حبیب کی بھی پریشانی یہی ہے، اب الفضل العباس کی بھی یہی پریشانی ہے، کیوں سید و شہدا اس لحاظ سے پریشان نہیں ہے، ساری پریشانیاں جو تھی وہ یہی عباس کیا کرتا ہے، علی اکبر کیا کرتا ہے، جن کو میدان میں عون محمد کیا کرتے ہیں، لیکن ایک سے ایک نے رشادت کر کے دکھائی۔ دشمن کی رپورٹیں میں اور آپ سنتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، دشمن تھا، دشمن اگر یہ چیزیں لکھ رہا ہے تو سوچیں حقائق کس قدر اس سے بھی زیادہ تلخ ہوں گے۔ اربعین جو ہے وہ آداد میں میں نہیں جانے لگا ہوں، پھر جنتری والے خوش ہو جائیں، ہاں دیکھا نا مولانا صاحب بھی پلٹ کے آئے نا جنتری میں، نہیں میں صرف آداد جو ہے وہ خدا نے ایک حکمت رکھی ہے عدد میں، اس سے کوئی شخص بھی منکر نہیں ہے، مثلا سات کا ایک اثر ہے، سات کے عدد کا ایک اثر ہے، دس کا ایک اور اثر ہے، یا مثال کے طور پہ ستر کا اثر ہے، مثلا سات کا کہتے ہیں یہ دوام کی علامت ہے، سات دن مثلا ہفتے کے سات دن ہیں، یا سات ہمارے اعضا زمین پہ لگتے ہیں سجدے میں، بس میرا سجدہ دائمی، خدا اب یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے جو میں اٹھ جاؤں گا، اب یہ روح تیرے سامنے سجدہ ریز ہے، جو تو کہے گا، تو کہے گا سود نہیں کھانا، نہیں سر جھکا ہوا ہے، یعنی خدا تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، جو تو کہتا ہے، تو کہتا ہے اگر دن کو تین حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کاروبار، ایک حصہ بچوں کے لیے، ایک حصہ مومنوں سے ملنے اور جائز تفریحات کے لیے، میں یہ کہوں گا نہ کہ میں سارے کا سارا کاروبار، پرائم ٹائم کاروبار میں دکھ، گندے کپڑے بیوی کے لیے، غصہ بچوں کے لیے، بیوی پہ غصہ تو نہیں نکال سکتے نا، اتنی جرت تھوڑی ہے آپ میں، ہاں میں جرت ہوتی تو آپ کا آپ کا قیام کر چکے تھے، 313 جمع ہو چکے تھے، جرت تو ہے نہیں آپ بات کرتے ایسی شعر بنتے، وہ کہتے ہیں جو اپنے دوستوں کے سامنے بڑا وہ پھوپا والا ہوتا ہے نا، یہ گھر میں بلی ہوتا ہے، بس آپ دیکھ لیں آپ کے آس پاس والے اگر کوئی ایسا ہے، ہاں لے کے آؤ چائے، یہ گھر میں جا کے بیگم کیا ہے، چائے لاؤں آپ کے لیے، پینی خود ہوتی ہے، گرم چائے تازہ تازہ لے کے آؤں میں اپنی بیگم کے لیے، یہ دستور ہے، جو گھر میں سخت ہوگا باہر دوستوں کے ساتھ نرم ہوگا، حالانکہ دونوں غلط ہیں، دونوں ہی غلط ہیں، دونوں فطرت کے خلاف ہیں، تمہاری زندگی ایک میرٹ کے بیس پہ ہونی چاہیے، میں افراد کی مخالفت نہ کروں، بات کی مخالفت کروں اور بات کی ہی تائید بھی کروں، جو بات ہے اس پہ توجہ دی جائے، پیغام پہ توجہ دی جائے۔ فی الحال ہمارا نظام زندگی اہل بیت سے نہیں ملتا، فی الحال جو موجودہ حالات ہیں، شادی کے معیارات غلط ہیں، ایک اچھا اسٹیپ آپ کی کمیونٹی نے اٹھایا، بلکہ کئی اچھے اسٹیپ، ایک تو ولیمے کا ٹائم جو تھا وہ اس کو کنٹرول کیا، جس سے الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً، کیونکہ بعض جگہوں پہ نہیں ہے، کراچی میں میرے خیال میں نہیں تھا، شاید اب ہو گیا ہو، وہ تو جو ہے 4 بجے میرے خیال میں دلہا دلہن وہیں پہ تہجد پڑھ کے تو پھر ایک ہی دفعہ گھر جاتے تھے، تو 4 بجے تک چلتا رہتا تھا جو بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے انیشیل اسٹیپ ایز اے شیعہ کمیونٹی آپ نے اٹھایا، نہ ایز اے شیخ کمیونٹی، میں نہیں کہوں گا، میں آپ کو ایز اے شیعہ کمیونٹی سمجھ لوں، شیعہ کمیونٹی آپ نے اٹھایا اور اس کا اچھا رزلٹ نکلا، پھر آپ نے دوسری چیزوں میں بھی، ایک کو جو جہیز والا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس کو سختی کو جو ہے نا وہ اگر مثال کے طور پہ ڈنڈے کے ساتھ ہم کرنا چاہیں گے نہیں ہوگا، ہمیں تربیت کرنی پڑے گی، اور تربیت جان جوکھوں کا کام ہے، اور تربیت کی انیشیل سٹیج 7 سال ہے، اور 7 سال میں ہم نے بول کے بچے کو کچھ نہیں سکھانا، پرفارم کرنا ہے، جو کچھ چاہتے ہیں بچہ کرے پہلے ساتھوں میں 7 سالوں میں اس کے سامنے کر کے دکھائیں، اس لیے کہ وہ آپ کو 7 سال میں آپ اس کے رول ماڈل ہیں، جو آپ کریں گے وہ ویسے ہی، اس لیے پہلے 7 سال بہت احتیاط والے ہیں، بہت زیادہ احتیاط، بس آپ ہمیشہ ہی سمجھیں باتھ روم میں بھی 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب آپ کی کیا حالت ہوگی، یعنی کوئی جگہ جہاں وہ ہے سمجھیں 360 کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے، जब वो नीचे देख रहा है तो आपको देख रहा है, जब वो टीवी देख रहा है तो आपको देख रहा है। हो सकता है अलबत्ता टीवी माँ बाप की जगह किसी हद तक ले ले, और वो बहुत ख़तरनाक है। बच्चा अगर टीवी के जो उसके अंदर एजिटेशन पैदा करता है, सबसे फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, क्यों? रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है जो देख रहा है, खुसूसन कार्टून रियलिटी नहीं है, उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। बहुत ज़्यादा एनिमेशन देखने का ये नुकसान ये है, असल बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखने का नुकसान ये है, फीलिंग सच्ची नहीं है, आप फील नहीं कर पा रहे, वो तस्वीर है, तसव्वुर में जा ही नहीं रही है। बड़ी मुसीबत है वो टेलीविज़न जो है, लिमिट होनी चाहिए, वो भी क्या देखें। बच्चे को 7 साल आपने करके दिखाना है, खाना कैसे खाना है ख़ुद खा के दिखाएं, परफॉर्म करें, आपने उसको बाहर ज़रूर लेके जाना है। पहले 7 साल में आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि बच्चे को शाम को बमा अपनी जौजा के किसी अच्छे पार्क में किसी एक जगह पे लेके जाएं और उसके साथ गुफ्तगू करें, उसको टाइम दें, उसको एहसास होने दें कि हाँ इस वक्त सबसे बड़ा और कीमती खिलौना हमारा तुम हो। चलता फिरता विदाउट बैटरीज, बैटरीज भी बड़ी अच्छी है उसकी, खाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दिखाएं कोई ऐसा खिलौना, खुद खाता है पीता है एंजॉय भी करता है। और अब बाज़ अवकात बच्चे नहीं एक चीज़ खाते, क्यों? बड़ा नहीं खा रहा, बड़ा खाना शुरू कर दे प्याला भर के वो भी खाना शुरू कर दें, बड़ा आसान होता है। अक्सर बच्चे के खाने के टाइम बड़ों के साथ नहीं मिलते, मिलाएं, एक टेबल एटिकेट्स शुरू के सालों के हैं, बच्चे को समझ आ जाए हाँ जी ये फैमिली मील टाइम है, पूरी फैमिली इस पे इस वक्त बैठेगी, ये एटिकेट्स है। वो जो फिल्मों में आपको दिखा रहे हैं इंग्लैंड में, ये ख़त्म हो चुका है, वहाँ अमेरिका में जो फैमिली सिस्टम है तबाह हो चुका है, हम भी तकरीबन तबाह हो चुके हैं। सोचें कितनी हमारी फैमिलीज ऐसी, कितने हफ्ते में कितने दिन हम बच्चों के साथ बैठ के बीवी के साथ बैठ के एक मेज़ के ऊपर खाना खाते हैं, सबके टाइमिंग मुख्तलिफ हैं, बाप अक्सर लेट आते हैं बच्चों के साथ खाना नहीं खा सकते, सुबह लेट उठते हैं 11 बजे मिसाल के तौर पर नाश्ता करते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए, बहुत कम टाइम जो रह जाता है वो कौन सा है, रात वाला, तभी वो गोल गोल आंखें हुई होती हैं उल्लू की तरह, और उस वक्त बैठ के हम बच्चों के साथ, अब खिलाफ फितरत है, फितरत कह रही है सो जाओ, आप कहते हैं नहीं सोना, फिर हम फितरत के अगेंस्ट चलेंगे। हर चीज़ को फितरत के मुताबिक रखें, हर चीज़ परफेक्ट रहेगी। बेहतरीन एज शादी की अंडर 20 है लड़के के लिए, लड़की के लिए अंडर 15 है, बेहतरीन। बीबी दो आलम हज़रत फातिमा की एज जो है वो 7 साल है, 9 साल है जब शादी हुई, 9 साल अमीरुल मोमिन के घर में रही, 18 साल हज़रत अमीर 25 साल के हैं, और शायद यही था कि शायद इंतज़ार में थे कि 9 साल बीबी की एज कंप्लीट हो जाए, 25 यानी 20 से 25 आइडियल टाइम है शादी का, लड़की के लिए भी 15 से 20 इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि 19-20 में उसके अकायद पुख्ता होने शुरू हो जाते हैं, अब वो चेंज नहीं कर सकती चाहे भी तो नहीं, फिर चेंज क्या होगा, तलाक होगी। 20 के बाद जितनी शादियाँ हो रही हैं उधर रेजिस्टेंस है। कल भी एक जगह मैंने ये मसला हायर एजुकेशन वाला छेड़ा और उस पर शदीद डॉक्टर हजरात का रद्द अमल था, वही गायनोकोलॉजिस्ट वाला पुराना जो है मसला छेड़ दिया, अगर आपके खवातीन को गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना हो तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा मर्द चेक कर सकता है, तमाम मराजे के फतावा मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट के बहाने की वजह से खवातीन को एक्सपोज कर दूँ माशरे के आगे ताकि वो अपनी असल जिम्मेदारी अंजाम ना दे सके। मैंने कहा होमवर्क कर ले, जहाँ कहेगी हम उसको ले जाएंगे, होमवर्क क्या है, तरबियत का निज़ाम घर का ज़बरदस्त होना चाहिए, घर में दुआएं, ज़ियारतों का माहौल, घर में जो है वो रूहानी फिक्र, महीने में एक दफ़ा एक किसी टीचर को किसी उस्ताद को बुला ले, फैमिली जो है वो उससे मुतालिक सिखाएं अखलाक फैमिली का कैसे होना चाहिए। इतना मुर्दों के लिए मजालिस कराने का सवाब नहीं है जितना जिंदों की जो है वो जिंदगी के लिए प्लानिंग करने का सवाब है। हम चिमटे हुए अभी तक वो पड़दादा को, वो आधा बरसफ़ का सफ़र तय भी कर चुके हैं, पीछे मुड़ के ओ मैं काफ़ी ठीक ठाक हूँ, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, अपने लड़के की फ़िक्र करो। कब हमारे मेंबर से इजाज़त मिली हमें कि हम जो है वो उसूल बयान करें, किस मेरिट क्या है, शादी का मेरिट क्या है, शायद शादी की एज क्या है? कब आपने तरबियत पे बोलने दिया? अब तो मना करते हैं, आप बहुत तरबियत पे बोलते हैं। अब तरबियत पे जब आप बोलते हैं, तरबियत बाज़ औक़ात हंटर भी दिखाना पड़ता है, मारना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। हमारा हंटर क्या होता है? वो छोटे छोटे धमाके जो हम करते हैं, यही मिसाल के तौर पर जो गलत नॉर्म्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो इरिटेट कर दिया कि जी जुलझना को संवारना इतना अहम नहीं है, दुल्हा के सर पे ताज और सेहरा और लाइटों वाला। हमारे वालिद कहते हैं हमारे ज़माने में लाइटों वाले सेहरे होते थे, हमारे वाह टेक्नोलॉजी तो वो थी, दुल्हा चलता जा रहा है और लाइटें जो है वो भी चल रही हैं, और घोड़े पर बैठना लाजमी होता था दुल्हा के लिए। आज घोड़े पे बजाए तो दोनों परेशान हो रहे होंगे, दूल्हा ज़्यादा परेशान हो गई ये किधर भाग रहा है, और वो भी परेशान होगी क्या मखलूक बिठा दी मेरे ऊपर। यानी बस चीज़ें जो है उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा हमें, और ये एक दिन का काम नहीं है, शख्स का काम नहीं है, आलिम नहीं कर सकता। एकेडमी चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, ज़रूरत वाले अफराद चाहिए, यहाँ पर वो अफराद चाहिए जैसे कुमैल इब्ने ज़ियाद है, साया बसाया अमीरुल मोमिनीन के पीछे है, असबग इब्ने नुबाता चाहिए, 19 की रात को गलियों में ढूंढ रहा था अली किधर है, आज रास्ता क्यों तब्दील कर लिया, अकेले क्यों गए हैं, चाहिए हमें ये दलेर चाहिए, मालिक अश्तर चाहिए, नहीं है हमारे पास ये लोग, जरूरत वाला फ़र्द ही नहीं है, ना उलमा में ना गैर उलमा में, चीखना चिल्लाना हम सबको आता है, करना है मैं गैर उलमा में मैंने देखा है ज़्यादा ज़रूरत वाले लोग हैं। बाज़ औक़ात उलमा भी अपने बच्चों की शादी करते हुए कहते एक ही तो बेटा है, आज रुफ़ अल कलम, आज थोड़ी सी ढोलकी ले आओ, ले आओ ले आओ ले आओ, मैं कानों में रुई डाल लूँगा, नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ा, आप बाहर जाएँ, आप अंदर हो जाएँ, आप दुनिया से चले जाएँ, आपने इजाज़त दी है, आप जिम्मेदार हैं, इजाज़त ना भी दियो, मैंने तो बड़ा ही समझाया, तुम बड़ा ही समझाया, जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी से माफ़ नहीं होते। बेटी को बड़ा समझाया, बेटी शौहर से ना लड़ा करो, गुस्सा ना मारा करो शौहर को, पिटाई ना किया करो शौहर, गालियाँ ना दिया करो, नहीं मानती मैं क्या करूँ आगा साहब, क्यों करूँ सरकार, आप खुदा ये नहीं पूछेगा कि तुमने मसला सॉल्व क्यों नहीं किया, खुदा येगा ये गलती हुई है, तरबियत में नक्स था, बेटी के कान पकड़ के कहते गेट आउट, इस घर में आना है शौहर के साथ आओगी, वरना दरवाज़ा बंद है, जहाँ मर्जी जाती हो जाओ, एक दफ़ा करके तो देखें, अगली दफ़ा अगर उसने तलाक और जुदाई का नाम ले लिया। जब औरत के पास पैसे जेब में आ जाएं, इख्तियार आ जाए, तो हर किस्म की खराबी पैदा होगी। आपके यहाँ शबी खराब किसने की है? खवातीन ने की है। मेहंदियाँ निकाली, मर्दों को तो पता ही नहीं मेहंदी का पैकेट कैसा होता है, हो सकता है दाल का पैकेट उठा के ले आए, ब्राउन वाली दाल नहीं होती, हाँ उनको तो रंग का ही नहीं पता होगा जवान को, आपको पता है मेहंदी कैसी होती है? नहीं पता ही देखें जवान जी उठने बच्चे मन के सच्चे आओ मैं आपसे तो नहीं पूछ सकता था, मैंने तो जवान से ही पूछा था। दुरूद पढ़िए मोहम्मद, ये छोटा सा धमाका था, ये खुद एक धमाका है, और इसीलिए कि जो हम होश में रहें, हमने जरूरत का मुजाहरा करना है। बाज़ औक़ात अम्र बेमारूफ लिसानी है, बाज़ औक़ात लिसानी नहीं हाथ से पकड़ना भी है, बाज़ औक़ात पकड़ के बज़ोर वापस घर ले के भी जाना है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मर्द देखे हैं कि जिसके घर बेटी रात को 12 बजे पहुंची है, उसने बेल बजाई है, बाप ने जो है वो हमसाया मुझे बता रहा है, बाप ने अंदर से पूछा है कौन, कब बाबा मैं दरवाज़ा खोलें, बाहर दरवाजे पे आया है, क्योंकि उनको खबरें मिल रही थी कि जी हालात हवा अबरालूद है शदीद ससुराल में। आगे पूछा, बेटा खुश आमदीद, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, बैग क्यों उठाया हुआ है मिसाल के तौर पे, कब आवा मैं अंदर आ जाऊँ बता के। शौहर किधर है? मैं लड़के आई हूँ, मेरी बेटी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठो वापस अपने घर जाओ, जब अपने शौहर के साथ आओगी ना तो खुश आमदीद हम घर में ज़रूर। बच्ची कह, बाबा मैं लड़के आई हूँ, मैं फलां करके आई हूँ। कहा इस घर में तुम्हारे अकेले आने की कोई इजाज़त नहीं, शौहर आए आके तुम्हें छोड़ के जाए मोस्ट वेलकम, अकेली नहीं आ सकती। वहाँ से वापस कर दिया, क्यों? इसलिए कि बाप जानता है अगर इस घर में तलाक हुई ये दुनिया में खुदा के लिए मबगूज तरीन घर हो जाएगा। अब बिस्मिल्लाह सुबह से शाम तक यहाँ पे विर्द करवाएं, मजालसें करवाएं, कुछ नहीं होने वाला, मलऊन तरीन घर ये है जिस घर में तलाक हुई है, और वो भी नबी की बेटी, सारी औरतें नबी की बेटी हैं, ये एजाज़ है उनका। अगली दफ़ा तू कहना और काम कहते हुए ख्याल कीजिएगा, नबी की बेटी हैं, हव्वा की बेटी नहीं है, नबी की बेटी है। मैं इसलिए उनकी साइड लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपने मर्द भाइयों से कोई दुश्मनी है कि खाना भी ये पकाएं और कपड़े भी यही धोएं, और वो काम कोई भी दाया कर सकती है, आप खुद कर सकते हैं, इंजॉय करें उसको, कानों में टूटियाँ लगा लें, कोई ज़बरदस्त किस्म का मातम नोहे वाला लगा लें और कपड़े धोना शुरू कर दें, बर्तन धोने मतलब ज़्यादा जोशीला ना लगाइएगा, बर्तन पता चला टूट गया थे नहीं, आराम से सुकून के साथ। लेकिन ये काम हुनर मर्द में, स्किल्स मर्द में। मैंने यहाँ पे रिवायत पढ़ी थी आपके सामने, वो रसूल खुदा जब मर्द एंटर होता है, पढ़ी है यहाँ पे? नहीं पढ़ी मेरे ख्याल में, दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले वहाँ। जब भी कोई जवान मस्जिद में एंटर होता ना, रसूल खुदा का पहला सवाल ये था, ये नहीं पूछते थे इसका नाम क्या है, इसका कबीला क्या है, इसका रंग क्या है, नस्ल क्या है, कुछ भी नहीं। अमीर बाबाप हैं, शेख हैं, मलिक हैं, सादात हैं, कुछ भी नहीं पूछना, बल्कि क्या पूछते थे, हल लहू मिन हिरफा, इसको कोई हुनर आता है, कोई स्किल आती है, कितना एजुकेटेड है? रसूल खुदा को इससे कोई वास्ता नहीं, एम फिल कर रहा है जी, एम बी बी एस कर रहा है जी, मियाँ बीवी बच्चों समेत, हाँ इससे कोई वास्ता नहीं रसूल खुदा को। रसूल खुदा फरमाते हैं हल लहू मिन हिरफा, मैट्रिक कर लिए, कोई हुनर आता है इसको? अगर कहते कि हाँ या रसूल अल्लाह हुनर आता है, दूसरा जब सवाल रसूल खुदा का क्या होता, रसूल खुदा कहते हल यज़्ज़वाज, आइए इसकी शादी हुई है। देखिए एक शर्त शादी के लिए, हुनर आना चाहिए। अगली दफ़ा जिनके घर आए ना हम रबीउल अव्वल में रिश्ते, ख़बरदार जो किसी ने पूछा कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, कितना पढ़ा लिखा है, आलिम दीन है, मुझे हुनर आता है या नहीं आता, अब ये शादी शरी की शरीयत के मुताबिक हो, हुनर आता है या नहीं आता। खैर रसूल खुदा जब कहते कि जी हाँ शादी हुई भी है, तो रसूल खुदा कहते दुआ करें साहब, क्या खुदा यार इसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, इसकी रिस्क में इजाफा फरमा, इनमें मोहब्बत अता फरमा, सब आमीन कहते। अच्छा अगर जवाब होता है ला या रसूल अल्लाह बेचारा अभी जो है वो छल्ला ही है, हाँ फिरता रहता है, कोई कहीं से कुछ मिल जाए, तो रसूल खुदा फरमाते ए असहाब है कोई तुम में से जो इसको बेटी दे, मैं अभी निकाह पढ़ दूँ? कितना आसान है। बाज़ रिवायात मैंने देखी हैं कि लिखा हुआ दरवाजे की चौकट में चलते चलते जा रहे थे, जवान आया, लड़की आई है, खड़े खड़े वहाँ पे बाप से इजाज़त ली और निकाह पढ़ दिए। हमारे ज़माने में होता तो सारे उलमा मिल के तकफीर करते रसूल खुदा, ये निकाह हरगिज़ गलत 100%, क्यों आलिम को नहीं बुलाया, फीस किधर है, रजिस्ट्रेशन अलग होती है, हमारी रजिस्ट्रेशन अलग है, फिर वो वाला हिसाब ना हो। वो कहते हैं एक आलिम जो है वो कहीं पे मजलिस पढ़ने गया, हफ्ता मजलिस पढ़ी, पहला दिन पढ़ा कुछ ना हुआ, कुछ से मुराद कोई चीज़ पेश नहीं की गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, नमाजें भी पढ़ाई वहाँ, उसके बाद जो है वो अब जब जा रहे थे उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, अजर अजीम अता फरमाए, आपको बड़ी आपने मेहनत की है और असल अजर तो खुदा ही आपका अता करे, हम कैसे अता हुए। निकल आए वहाँ से चल पड़े, जब सवार हो तो देखा अब भी कुछ नहीं हुआ, कहीं बड़ी ढीठ कौम है। अच्छा वो एक कराती बड़े खूबसूरत बात करते थे, वो कहते थे हमें हुक्म दिया है कुछ ना मांगो, तुम्हें भी बताया गया कि कुछ ना दो, तो खैर वो वो कहते जब वो जा रहे पीछे से उन्होंने फ़ोन किया, हाँ जी बानी साहब खैरियत है ठीक, वो मुझे भी याद आया मैं भूल गया था, 5 दिन मैं जो नमाज़ें पढ़ाता रहा ना औसतन हर रोज़ 17 रखकर मैं वजू करना भूल गया था, तो वो सारी बातें लेना जमात लोगों को कहें सर नो ज़रा नमाज़ें पढ़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खुदा आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। अब ये वाला बदला नहीं हम लेना चाहते कि जी कि आपने आलिम को नहीं बुलाया, अच्छा एक रजिस्ट्रेशन होती है एक और रजिस्ट्रेशन रूहानी सीगा सही नहीं पढ़ा गया, ज़बर में गलती थी ज़ेर में गलती थी, नहीं हम वो नहीं कर रहे, नहीं सादा निकाह है। अब तो मैं नहीं कहता तो इतना सादा कर लें, मैंने जो जिस अगर जिन्होंने मैंने देखा कैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं तो उसको बड़ा दिलचस्प बना देता हूँ, वाकई होना भी ऐसे ही चाहिए। बाज तो जब इतनी टेंशन पैदा कर देते हैं निकाह में कि अगला कहता है मेरी तौबा अगली दफ़ा नहीं करवाऊँगा, इस लिहाज से तो अच्छी बात है लेकिन वो बस एक ही दफ़ा काफ़ी है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं मिसाल के तौर पर लड़की से एक इजाज़त लेते वक्त ये पूछता हूँ ज़रूर कि दो चीज़ आए मोहतरमाए फिलहाल मिसाल के तौर पे बिनते फिलहाल आया जो है वो मैं आपकी तरफ से वकील हूँ कि आपका निकाह फिलहाल के साथ जो है वो, अब वो अक्सर हमारी बच्चियों को ट्रेनिंग तो नहीं होती, पहली दफ़ा शादी कर रही है दूसरी दफ़ा थोड़ी है, ऐसी खुश किस्मत तो कम ही होती है जिनकी दूसरी दफ़ा हो रही हो, तो वो आहिस्ता से जो है वो वैसे तो बड़ा चीखती चिल्लाती हैं घर में लेकिन जब आलिम सामने आए तो फिर वो हिजाब भी याद आ जाता है सारा कुछ याद आ जाता है। हमारे एक दोस्त है वो कहते थे उलमा ही ना महरम है बाकी सब महरम, खैर वो जब जवाब उन्होंने देना है अब जवाब में वो बमुश्किल जवाब की आवाज़, मैंने कहा आप हजरात में से किसी ने सुना, अच्छा फिर मैं दोबारा दोहराऊँगा और अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, जब वो जवाब दे देती फिर मैं आया आपने लड़के को देखा है नहीं, अच्छा दो तीन सवाल मैं ऐसे करता हूँ बीच में ये भी पूछ लेता हूँ, आया आप शादी के लिए रजामंद हैं, वो नहीं नहीं क्योंकि कह रही होती है इसमें भी कह देते नहीं, मैंने कहा चलो फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया, उठे जी उठे चले इधर तो लड़की रजामंद ही नहीं है, वो जान के मैं करता हूँ थोड़ी सी थ्रिल पैदा होती है मैं क्या कह रही हूँ, अक्सर को तर्जुमे का भी नहीं पता होता क्या गुफ्तगू हो रही है, छोटा सा लेक्चर हुकूक के ऊपर भी कि यही जो ज़िंदगी का 0 किलोमीटर है इस वक्त 0 किलोमीटर है, पीछे जो हुआ सो हुआ, अब जो होने जा रहा है मैं एक नई ज़िंदगी आगाज़ कर सकता हूँ, एक नई सुबह एक नई जिसको हम कहते हैं कि नया रजिस्टर है, वाकई जो है वो शख्स अपने दीन और उसको बचा सकता है वाकई, जैसे आयमा तायरीन की ज़िंदगी थी जैसे खुद हज़रत अमीर की, आप देखें तो सही मोहब्बत और एहतराम देखें तो सही, हमारे यहाँ तो उल्टा होता था कि जी मर्द ने पहले ही दिन खातून को जो है वो इतना डरा के रखना है सारी ज़िंदगी, जैसे ही वो शौहर का देखे तो आधा खून खुश्क हो जाए आधा जो है वो रह जाए ताकि ज़िंदा रहे कल के लिए, कल फिर पूरा हो जाएगा दोबारा खुश्क होगा, यानी ये वाली चीज़ के साथ जो है वो ये घोंसला आबाद नहीं हो सकता, इसमें बच्चे जो है वो परवान नहीं चढ़ सकते बीमार होंगे बच्चे, तो हज़रत ये चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाएँ कहाँ सिखाई जाएँ, ना स्कूल ना मदारिस ना मसाजिद ना मजालिस, और ये दर हकीकत हमारे लिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमें फ़िक्र और ताक़ुल क्यों चाहिए, जो हमारी गुज़श्ता रातों की बहस थी वो ये थी कि जी हमें सबसे पहले अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाना है, आप अगर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करें तो मुझे बताएं किससे मोहब्बत कर रहे हैं, अल्टरनेट क्या है और आए कोई और चीज़ उसकी जगह ले सकती है हरगिज़ नहीं, और आप अगर बीवी से नहीं मोहब्बत करेंगे आपकी बीवी को जो है वो उसके जवाब में आपसे मोहब्बत नहीं, फिर वो किससे मोहब्बत करेगी? जाहिर ड्रामों से करेगी, वो भी ड्रामों में अपना फ्यूचर देख रही होगी, फिर वो डाइजेस्ट पढ़ेगी, डाइजेस्ट पढ़ने में कोई मज़ाक़ नहीं, ड्राउने डाइजेस्ट पढ़ेगी, वो ख़तरनाक है, सनसनीखेज डाइजेस्ट पढ़ेगी, फिर वो कहेगी अच्छा मैंने जॉब करनी है, क्यों? फ्रस्ट्रेशन है, मैं ताकि जो है वो जॉब करूँ। औरत के लिए जॉब नहायत ख़तरनाक है, नहायत ख़तरनाक है, खुदा ने उसको जॉब के लिए बनाया ही नहीं। हम कहते नहीं ऐसी की तैसी, 2018 में पढ़ाया किस लिए था, एम फिल करवाया क्यों है? इसलिए मैं कहता हूँ मैं हायर एजुकेशन से ही मुखालिफ हूँ कि जो बाद में जॉब में तब्दील हो जाए। एक खातून, ये मेरा जुमला नहीं है, रहबर मुअज्जम फरमाते हैं, एक खातून अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखें हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अली अकबर की भी माँ है, अब्बास की भी माँ है, ऐन मुमकिन है शख्स की अपनी औलाद ना हो, लेकिन क्या दूसरे बच्चों को नहीं पाल सकती? क्या उनके लिए नमूना माँ नहीं बन सकती? हज़रत आसिया की तरह हज़रत मूसा को पाल रहा है, कितना बड़ा एहसास है, हज़रत मूसा को पाल रहा है। हज़रत खदीजा को देखें, हज़रत खदीजा ने रसूल खुदा को एक मानी में माँ वाली सरपरस्ती दी है, बीवी है लेकिन माँ वाली सरपरस्ती दे रही, जैसे माँ देती है, सहारा है। कोई अगर इसके ऊपर लव स्टोरी बनाए तो ज़बरदस्त बनती है। एक सीन सिर्फ मैं आपको बताऊं जो हुआ करता था अक्सर, बीवी तकरीबन मगरिब से पहले जो है वो ढूंढना शुरू कर देती कि रसूल खुदा कहाँ है, मगरिब होने को अभी घर नहीं आए। देखिए नस्ल कैसे आबाद हुई है, हम जब तक हज़रत खदीजा को नहीं पहचानेंगे हम बीबी फातिमा को कैसे पहचानेंगे, हम बीबी जैनब को कैसे पहचानेंगे, हम कैसे हज़रत सकीना और रुकैया पर रो सकेंगे? वो सकीना जिसको देख के इमाम हुसैन फरमाते थे कि मेरे जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुशाबहत मेरी नानी की है। नस्लों में ट्रांसफ़र होती है। बीबी खदीजा दौड़ रही हैं, हाथ में जो है वो अशरफियाँ पकड़ी हुई हैं, लो मुझसे रकम ले लो, सिर्फ इतना बता दो मेरा मोहम्मद कहाँ है, किसी ने मेरे मोहम्मद को नहीं देखा। और जब बातें देखती किसी कोने में लहू लहान रसूल खुदा पड़े हुए हैं, आके उठाती हिमायत करती जख्मों पे मरहम लगाती, और जो दिल के ज़ख्म थे सबसे सख्त हुए हैं दिल के ज़ख्म, या रसूल अल्लाह तस्कीन देती, हालात बेहतर होंगे या रसूल अल्लाह, आपका खुदा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह, दिलासा देती उम्मीद दिखाती, हामी थी नासिर थी मददगार थी, फख्र कर रही हैं कि मैं कनीज़ हूँ मोहम्मद की, सारी दौलत निछावर कर दी, कभी फख्र नहीं किया क्या रसूल खुदा आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, मुझे आता है, हज़रत खदीजा को आता था, फख्र नहीं किया, जुमला नहीं बयान किया ऐसे, ये कितना अहम है। बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को देख लें, हज़रत अमीर के सामने किस कदर खाजे हैं, वो खातून कि जिनकी अजमत के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, खुदा ने कहा कि ए मोहम्मद ए अली मैं तुम दोनों को खल्क ना करता अगर फातिमा को खल्क करना मकसूद ना होता। अभी तक मैं इस जुमले पे परेशान हुई है, क्या इसका मतलब क्या है, लौ लाख वाली हदीस जो है ये है क्या? फिर एक जुमला और मशहूर है कि अगर हजरत फातिमा मर्द होती लकान जो है वो लकानत नबी या नबी होती, अगर मर्द होती ना इमाम, इमाम से अफजल मकाम देखें आप ख्वातीन का, बस सिर्फ ये कह के तहकीर कर देना, और रात हमारी डिबेट चलती आओ हायर एजुकेशन में जाएंगी तो फिर जो है वो मुकाबला कैसे करेंगी? मैंने कहा हायर एजुकेशन में चली गई तो मुकाबला कैसे करेंगी, इसलिए कि हमने इसको और बहुत कुछ सिखाना है, किताबें पढ़ना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूह को पढ़ सके समझ सके, बच्चे की जो है मन के अंदर जो चीज़ें उसको समझ सके ये ज़्यादा ज़रूरी है, शौहर की जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके, उसके गुस्से को ठंडा कर सके, उसके लिए ठंडक हो, आराम का बायस हो। अगर ये खुद पढ़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई तो ज़बरदस्त डिबेटर बन जाएगी। शौहर कहेगा आज आमलेट खाएंगे, नहीं आपको नहीं पता आमलेट अच्छा नहीं होता, आज बॉयल अंडा खाएंगे। अच्छा बॉयल अंडा खाएंगे, नहीं आज बॉयल अंडा नहीं खाएंगे, आज अब सिर्फ प्लेन जाम खाएंगे। रिसर्च ये बता रही है कि घर चल सकते। मैंने नहीं कहा कि वो खान साहब, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ वो खान सामा नहीं है, घर की मैनेजर है, बिल्कुल बैंक मैनेजर की तरह। बैंक का मैनेजर सिक्योरिटी पर नहीं खड़ा होता, बैंक का मैनेजर जो है वो अकाउंटेंट नहीं होता, पूरे घर के निज़ाम को अपनी गिरफ्त में। मैनेजर उठा दे बैंक नहीं चलेगा, घर के निज़ाम की मुदीर मुदब्बिर औरत है। किसने क्या जॉब करनी है ये, इसके लिए प्लानिंग चाहिए। कुरान बच्चे ने कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और घर को कुरानी करने में जितनी मुअस्सर खातून है कोई मर्द नहीं है। एक खातून घर में सुबह उठ के ज़ियारत आशूरा पढ़े, पूरा घर ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू कर देगा। अगर तशय्यो बची है तो ख़वातीन की वजह से बची है, और अगर इसमें बिगाड़ आया है तो ख़वातीन की वजह से आया है। और दुश्मन को भी पता है कि किसको टारगेट करना है, उन्होंने टारगेट किया, और अफसोस की बात है कि हम सब टारगेट हो गए। जिस बच्ची को जो है वो शुरू दिन से ही हम दूर रखते, अब रसूल खुदा अगला जुमला भी सुने कि अगर जवाब में ये कहते कि इसको हुनर नहीं आता, तो पता है रसूल खुदा क्या फरमाते, सकत मिन आईनी, मेरी आंखों से गिर गए, मेरी निगाहों में गिर गए। कहा क्यों या रसूल अल्लाह, हुनर ही तो नहीं आता। कहा जिसको हुनर ना आता हो ना अपना दीन बेच के गुजारा करता है, बिल्कुल हमारे जाकिरों की तरह। हुनर नहीं आता, ना किताब लिख सकता है, ना तर्जुमा कर सकता है, ना दर्स दे सकता है, ना कुरान पढ़ा सकता है, दीन बेचता है, पैसे कमाता है, झूठी रिवायत सुनाता है, झूठे मसाइब सुनाता है, अगलों को तो पता ही नहीं, मुफ्त में गुनाहगार हो, गुनाहगार हो रहे हैं, ये ना सोचिएगा गुनाहगार नहीं हो रहे। झूठ के सुनने वाले का रूहानी असर उसकी रूह पर 100% पड़ रहा है, चाहे पता हो या ना हो, बल्कि अगर पता हो तो और ज़्यादा गुनाह बढ़ जाता है, जानते बूझते हुए सुन रहा है। वहाँ पे सादगी नहीं चलेगी, खुदा है मैं तो चिट्टा अनपढ़ सी, मैं तो कह नहीं आंदा, मुल्तान से होके आया हूँ, कुछ तो असर होगा। है जी, मुझे वैसे पंजाबी भी नहीं आती थी, अब मैं सराइकी बोल लेते। यानी असल चीज़ ये, कोई बहाना नहीं चलेगा उसने, खुदा के का अकल थी तुम्हारे पास, तुमने इस्तेमाल नहीं की, मैंने आंखें दी थी, फिर तुम फिसले हो, फिर तुम खड्डे में गिरे हो, एक ही दिन हर रोज़ तुम उसी खड्डे में जाके गिरते हो, पता है ये इब्लीस का वसवा है फिर भी उधर जाते हो, पता है टेलीविज़न गुनाह है फिर भी जाते हो। क्या इलाज है। और अब फिर टाइम ख़त्म हो गया, और आखिरी जो चीज़ थी कि अक्ल दर हकीकत हमें चाहिए क्यों, इतनी अक्ल की हमें ज़रूरत क्या है, बसीरत के लिए हमें अक्ल चाहिए, पैसा कमाने के लिए। कल मैंने आपको जो है उस दिन बताया था कि ज़ियारत अरबईन में ये जुमला है कि लोगों ने हज़रत अमीर की मुखालफत इसलिए की, अपनी दुनिया की खातिर, थोड़ी सी दुनिया रे की हुकूमत की खातिर हुसैन को कत्ल करने आए। बाज़ रिवायात में बाज़ को एक मुट्ठी खजूर की लालच दी गई थी, एक मुट्ठी खजूर ले लो हुसैन से जंग करो, इतना सस्ता किया हुसैन को, सारा कसूर दुनिया का था। आज वो जाकिर राजी हो जाते एक लाख पे झूठी मजलिस पढ़ दे, उसको पता भी नहीं कि इसके असरात नेगेटिव क्या हो रहे हैं, लोगों का ईमान ख़राब हो रहा है। जिसको आप सुबह से शाम तक अगर फ़ज़ाइल ही सुनाएंगे वो कहेगा बस ठीक है फ़ज़ाइल काफ़ी हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, ज़ोर के वक्त नमाज़ पढ़ूँ, इशा के वक्त उठ के नमाज़ पढ़ूँ, फजर की नमाज़ पढ़ूँ, मुझे ताकीबात पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं नाजुल बलागा क्यों खोलूँ, मैं तो अली अली करूँगा काफ़ी है। अली अली करूँगा, मुझे टिकट मिले। आप अली अली कहें आपको इराक वाले वीज़ा नहीं देंगे, पैसे खर्च करने पड़ते हैं सरकार, इराक वाले तक तो आपको वीज़ा नहीं दे रहे और आप जन्नत में दाखिल होने की सोच रहे हैं। खर्च करना पड़ता है, खुसूसन जहन लड़ाना पड़ता है। हमें जहन और अक्ल इसलिए चाहिए ताकि अपने ज़माने के वली को पहचानें। अगर उम्र बाकी रही मैं आपको इनका तनासुब बताऊंगा। आप आशूरा को बग़ैर ज़हूर इमाम ज़माना के अगर देखेंगे तो गलत और नाकस देखेंगे। आप हुसैन के क़याम को बग़ैर क़याम इमाम ज़माना देख ही नहीं सकते। ये आज हुआ क्या है, ये इतना मजमा किसके लिए? ये इमाम हुसैन को रोने नहीं आया था, ये इमाम ज़माना को तलब करने आया था। बोलो दुनिया ना समझे, बोलो कह रहे हैं हुसैन, बोलो कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन क्या लब्बैक या इमाम ज़माना से फ़र्क करता है? बिला खान हमने उस ज़माने में जाना है। ये मजमा हुकूमतें पैसा खर्च करके इकट्ठी नहीं कर सकती है कि नहीं? जो मुफ्त में इकट्ठा हो रहा है लोग खर्च कर रहे हैं, इराक की हुकूमत नहीं खर्च कर रही, अवाम खर्च कर रही है। वही अवाम जो एक रियाल नहीं छोड़ेगी कल अगर बाजार आप गए तो, वही शख्स जो मौके वाला था अब एक रियाल आपको बेचते हुए नहीं छोड़ेगा। मुफ्त खुराक आज से बंद, कल से पैसे देने हैं, इतना ही फर्क है। हाँ जी, ये है क्या 20 सफर मुजफ्फर, एक ग्लिम्प्स है दुनिया को कि देखो अगर मैं चाहूँ आऊँ लश्कर तैयार करूँ, ये लो 2 करोड़ इकट्ठा करना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और खुसूसन वो वाला 2 करोड़ के साथ ही जो है वो दाइश की जंग चल रही थी और करबला बॉम्बिंग के बिल्कुल उसमें था, रेंज में था। कल हम करबला पहुंच गए थे ना, यानी परसों जो हमारी आखिरी मजलिस थी उसमें हम करबला पहुंचे थे। मैंने आपसे अर्ज़ किया था जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने इस्तकबाल किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुरसा दिया था, बीबी ज़ैनब ने आके रिपोर्ट दी पूरे सफ़र की, भाई मैं फ़तेह करके आई हूँ, मैंने कूफा व शाम फतह किए, मैंने दरबार यजीद और दरबार इब्ने ज़ियाद को तबाह कर दिया, मैं कमर तोड़ा ही बनू उमैया की, ये अब खाक में मिल गए हैं। 3 दिन करबला में ही रहे, आज़ादारी की अपने शहीदों को। ये आज की रात जो हम बैठे हुए या आलोल्लाह सारी कब्रों के गिर छमा जला के बैठी होंगी, चराग जला के बैठे होंगे, याद कर रहे होंगे एक रात शाम गरीबा भी थी, शाम में शाक भी थी। बीबी ज़ैनब याद कर रहे होंगे एक वक्त था मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं हुसैन से दूर हूँ, लेकिन मैं कितनी दूर तक गई और ज़िंदा रही। बीबी ताजुब कैसे ज़िंदा हूँ और हुसैन नहीं है, मैं कैसे ज़िंदा हूँ? ये मोजज़ा है सैयद शहादा का, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। इमाम हुसैन की शहादत से पहले ज़ैनब बीबी ज़ैनब जो है तिल्ला ज़ैनबिया भी ढेर हो चुकी होती, जब हुसैन के गले पर छुरी चल रही थी उस वक्त। आधी रूह तो बीबी के अली अकबर की शहादत पे ही निकल गए। 3 दिन यहाँ पर रहने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि बीबी आप हमें मदीना जाना है, सारबान उधर ही है रखवाली कर रहा है। बीबी ज़ैनब ने सब बीबियों को कहा कि अपने जेवरात दो, सब ने जेवरात जमा किए, बीबी को पकड़ा है। बीबी ने सारबान को बुलाया, बशीर इधर आओ। बशीर करीब आया, सर झुकाया, वो बड़ा बाअदब है, अहले बैत का चाहने वाला है। खामोश खड़ा हुआ है बीबी के सामने, कब बशीर इस रास्ते में तुम्हारे सिपाहियों ने हमारा बड़ा ख्याल रखा, जाहिर है उन सिपाहियों के मुकाबले में कि जो कूफा से शाम लेके गए थे इन्होंने तो बहुत अच्छा ख्याल रखा। कहा इन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी, जहां हमने कहा वह रोक दिया, हमने कहा रुख मोड़ लो, हमने करबला जाना है अपने हुसैन को रोने के लिए। अच्छा मुझे नहीं मालूम इन तीन दिनों में सैयद साजनी, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक बाकी सर तो नहीं दिए थे यजीद ने, लेकिन सर हुसैन लुटा दिया था जो सैयद साजनी साथ लेके आए हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी में किस एहतमाम के साथ सैयद साजनी ने दोबारा कब्र खोदी होगी और फिर जब अपने बाबा को देखा होगा। गरीब बाबा, असीर कुरबात बाबा, कतील अबरात बाबा, इरमन इरमा बाबा, इरमन इरमा बाबा। देखा होगा कैसे बाबा के लाशे को झुके होंगे, सर मुबारक को साथ रखा होगा, कैसे और किस वक्त ये काम किया, मुझे सोचने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे समझ नहीं आती है कैसे किया होगा और कैसी कौन सी घड़ी होगी जिसमें ये काम किया। मैं अगर आपकी इजाज़त हो ज़्यादा इमाम पे गुफ्तगु नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरा दिल है ज़ियारत नाहिया के चंद लफ्ज़ पहले अदा कर दें। देर तो वैसे बहुत होगी लेकिन ख़त्म हो गया हज़रा, ऑफिशियली आज से आज़ादारी हुसैन ख़त्म। इराक में कल आप देखेंगे परचम वगैरह सारा कुछ जो है वो तब्दील हो जाएगा, से आपोश चीज़ें हटानी शुरू कर देते हैं और पहली रबीउल अव्वल को वैसे ही परचम और ये तब्दील हो जाते हैं। चंद जुमले इमाम ज़माना का नुहा किया है सैयद हुसैन, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसकी दाहिनी तरफ की पसलियाँ टूट कर बाएं तरफ आ गई थी, बाएं तरफ की पसलियां टूट कर दाहिनी तरफ आ गई थी। सलाम उन पाकीज़ा नफूस पर जिन्हें टुकड़े टुकड़े किया गया, मुसाफिरों में सबसे ज्यादा बेकस और मजलूम मुसाफिर पर मेरा सलाम, मेरा उन गिरेबारों गिरेबानों पर सलाम जिन्हें उनके खून से भर दिया गया। सलाम उस मजलूम इमाम पर जिसके सर को पुश्त गर्दन से काटा गया, उस रीश अकदस पर सलाम जो खून से सुर्ख की गई, उस रुखसार पर सलाम जो के खाक आलूदा थे, सलाम अर्ज करबला पे बहने वाले खून नाहक पर, सलाम जिस्मों से जुदा कर दिए जाने वाले आज़ा पर, सलाम नेज़ों पे उठाए जाने वाले सरों पर, मेरा सलाम ओ ज़ैन मज़लूम सलावातुल्लाह पर जिस पर आसमान के फरिश्ते भी रोए, मेरा सलाम उस कैदी पर जिसका गोश्त जंजीरें खा गई, इमाम ज़माना फरमा रहे हैं तवज्जो रखिए, मेरा सलाम उस मासूमा पे जिसके रुखसारों की रंगत करबला से शाम तक मुसलसल तब्दील होती रही, सलाम उन होंठों पर जो प्यास से सूखे हुए थे, मेरा सलाम हो उस बीवी पर जिसने करबला से शाम तक अपने जख्मी हाथों से अपने भाई के यतीमों को खाना खिलाया, उनके हिस्से का नहीं अपने हिस्से का खाना भी बच्चों में तकसीम करती रही। सलाम हो उस पर जिसके कब्र की मट्टी खाके शफा बनी, سلام ہو اس پر جس کے حرم کی فضائوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب سب کو چلنے کا حکم ہے, سب بیبیاں تقریباً تیار ہیں, کوئی گلہ نہیں کر رہی, کوئی شکوہ نہیں کر رہی. بی بی زینب کو جب کہا گیا کہ سید الساجدین نے کہ بی بی آپ بیویوں سے فرمائیں کہ بس اب تیاری کریں, آج یک یا کل صبح ہمیں نکلنا ہے. تین دن جب گزر گئے بی بی زینب اب ایک ایک کے پاس آ رہی ہے, سوچی یہ بھی ایک منظر ہے. کیوں؟ شام سے کربلا یا مدینہ کہنا یہ تو خوشی کی علامت تھی, لیکن اب کربلا سے جب کہیں گے مدینہ تو کیا حال ہوگا؟ ہم بھرا گھر آئے تھے, اب تو خود زینب بھی گھبرائے گی. بہت گھبرائے گی, عباس ساتھ نہیں ہے, حسین ساتھ نہیں ہے, علی اکبر ساتھ نہیں ہے, 18 بھائیوں کی اکیلی بہن. کتنا مان تھا بی بی کو, ایک ایک کے پاس آ رہی ہے, بہن اللہ تمہیں صبر دے, اجر عظیم دے, اجرک اللہ فی مصابن الحسین, خدا تمہیں حسین کی مصیبت پر اجر عظیم عطا فرمائے. سب ہی راضی ہو گئیں. بی بی رباب کے پاس آئے, پہلی مرتبہ بی بی رباب نے بی بی زینب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. بہت بامعرفت ہیں آپ لوگ, میری مدد کریں, میں یہ جملے نہیں بول سکتا. بہن زینب جو بھی یہاں سے جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وہاں انتظار کر رہا ہے. اب سے پڑھیے گا گھبرائے گی رباب. میرا ایک بیٹا تو یہاں پر دفن ہے حسین کے ساتھ, علی اصغر, ایک بچی میں دمشق چھوڑ آئی ہوں. اور پھر میرا سہاگ یہاں پر ہے, میں حسین کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ اب میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی. میں تو پانی بھی نہیں پی سکتی, میرے بچوں نے پانی نہیں پیا, میرے اب زندہ رہنے کی امید اور امنگ نہیں ہے. یوں کرو مجھ پہ رحم کرو, مجھے کربلا چھوڑ دو. سوچے اب بی بی کیا جواب دے, کوئی جواب نہیں ہے بی بی, کوئی جواب نہیں ہے. روتی روتی باہر آ گئی ہوں گی. اب صبح ہوئی ہے, قافلے نے چلنا ہے, سب تیار ہیں سوائے ایک خاتون کے. بی بی زینب نے سید الساجدین سے فرمایا, بیٹا سجاد سب مان گئے, تمہاری ماں رباب نہیں مانتی. میرا بس نہیں ہے, یہاں ید امامت چاہیے. سید الساجدین آئے, فرمایا ہماری ذمہ داری ہے واپس جانا, ہم نے حسین اور شہداء کی مظلومیت کا پیغام پہنچانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. सैयद साजिदीन के सामने नहीं बोलेगी बीवी का बेटा सज्जाद, बड़ा सख्त हुक्म है, बहुत सख्त हुक्म है। अगर मुझे इजाजत होती मैं सारी जिंदगी यहाँ पे हुसैन के जवार में गुजार देती, यहीं बैठ के तबलीग करती, दुनिया को सुनाती, आओ दुनिया वालों सुनो तुम्हें कहानी सुनाऊं फातिमा के लाडले की, नबी के नाजों के पले। सवार हो गए सब, काफिला चल पड़ा मदीना। ज्यादा आपको जहमत ना दूं, वैसे भी इन 40 दिनों में आपने बड़ी जहमत की है, ये बीवियां ही सिर्फ आपको अजर दे सकती हैं, खुदा गवाह है, और सैयद शहादा आपको अजर अजीम देंगे, मेरा ईमान है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपकी दुआएं और आपकी नुसरत को कबूल फरमाएंगे। जिस वक्त अब मदीना के करीब पहुंचे ना, सैयद साजिदीन ने कहा बशीर ज़रा आगे जाओ, जाके ऐलान कर दो हम कुछ दिन मदीने से बाहर रुकेंगे ताकि मदीने वाले तैयार हो जाएं, हम दाखिल होंगे। ये गया जाके खबर दी, या अहला यसरब ला मुकाम लकुम, अरे ओ मदीने वालों तुम किस सुकून में ना बैठना, बेसुकून हो जाओ, मैं खबर देने आया हूँ। अरे वो जो काफिला हुसैन शान व शौकत से लेके गए थे उजड़ा हुआ वापस आ गया। अब मदीने में आप कहते हैं कोहराम मच गया, पहले ही खबर दी ने, फौरन स्याह पोश हो गया, दौड़ रहे हैं, खाक सर में डाल रहे हैं, इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू हो गई। काफिला जिस दिन पहुंचा ना दरवाजे पर, सबसे पहले बशीर आगे आगे था, आके बताया, कहा कि लोग पूछते थे फिलाने का बताओ फिलाने का बताओ, अचानक खुद कहते हैं मेरी निगाह पड़ी एक बीबी पर जिसके हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ था। उसने पूछा ए बशीर ज़रा मुझे मेरे बच्चे के बारे में तो बता, मेरे बच्चे की तो खबर दे। कहा मैंने कहा बीबी उम्मुल बनीन के 4 फर्जंद करबल में शहीद हुए, मैं अगर ये खबर एकदम सुनाऊंगा तहम्मुल नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने एक एक करके नाम लेने शुरू किए। अभी 2 का ही तذکرہ किया था, कहा नहीं मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा है, अरे बशीर मुझे हुसैन की खबर दे। कहा बीबी जिगर थाम ले, तेरे अपने बच्चे नहीं बचे। कहा मैं मान नहीं सकती, मेरे 4 बेटे हो और हुसैन बाकी ना बचे। कहा तेरे 4 बेटे काम आ गए। कहा मैं मान नहीं सकती, कोई माई का लाल मेरे बेटों के हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। कहा इतना सुन ले, तेरे अब्बास के पहले बाजू काटे गए। अब उम्मुल मोमिनीन ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस आपने जो रो लिया यही मेरी मुज्द है, यही हम सब के लिए आजर के लिए काफी है। बीबी ने इस खड़े होके कहा अहले यसरब आज के बाद मुझे उम्मुल बनीन ना पुकार। अरे मेरे हजारों अब्बास कुर्बान हुसैन। देर बहुत हो गई है, दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ूं। बीबी ज़ैनब आई है, सबसे पहले कब्र रसूल पर गई है, कहा या रसूल अल्लाह आज अल्लाह फी अज़ाइल हुसैन का फटा हुआ जख्मी कुर्ता कब्र पर डाल दिया। यौम अला सदर मुस्तफा, कभी हुसैन की जगह सीधा है रसूल, या रसूल अल्लाह वही हुसैन, کربلا کی ریتی پر پڑا تھا جب شیور نے عبداللہ کا سامنا ہوا بی بی زینب سے، قریب سے گزر گئے جیسے علماء سے سننا ہے، قریب سے گزر گئے، یا ایک اور روایت کے مطابق بی بی نے اپنا دروازہ کھٹکایا. بہرحال عبداللہ پہلی نگاہ میں نہ پہچان سکے. بی بی نے کہا کہ حق ہے، تمہیں حق ہے کہ نہ پہچانو عبداللہ، میں زینب ہوں. سب سے پہلے بھائی کا پرسا، بھائیوں کا پرسا دیا. کچھ دیر آرام جب کر لیا، عبداللہ نے کہا میرے دل میں ایک چوبن ہے، مجھے کسی نے خبر دی ہے، جب میرے بیٹے اون و محمد شہید ہوئے نا، تو زینب نہ تم ان پہ روئی نہ تم نے ان کی شکلیں دیکھی، میرے دل میں ایک خلش سی ہے. بی بی خاموش. کہا عبداللہ، کہا اچھا ذرا بتاؤ کیا میرے بچوں میں کوئی نقص تھا، کوئی کوتاہی کی میرے بچوں نے؟ کہا نہیں عبداللہ، بڑی شاہانہ جنگ کی، حسین اپنے ماموں پہ قربان ہو گئے. کہا زینب پھر چہرہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہا عبداللہ کیسے دیکھتی، بھائی لاشا اٹھا کے لایا تھا، لاش کو دیکھتی یا بھائی کے چہرے کو دیکھتی؟ مجھ میں تحمل نہیں تھا، میں حسین کی شرمندہ آنکھوں میں دیکھوں، میں نے اس لیے نہیں دیکھا. اور پھر حسین نے میرے پہ ایک ذمہ داری لگائی کہ میری بیٹی امانت ہے تمہارے پاس، اس کا خیال رکھنا. میں اس امانت کو جب لے گئی، وہ باپ کے دکھوں سے اس قدر چور ہو گئی تھی کہ 40 دن سے پہلے ہی اپنے باپ سے جا ملی، میں حسین کی بچی کو نہ بچا سکی. اور میں نے حسین سے یہی کہا، حسین میں نے اون محمد کو نہیں دیکھا، پوچھا تم مجھ سے رقیہ کے بارے میں کچھ نہ پوچھنا. عبداللہ بھی بیٹھ گئے، اب بی بی زینب کے ساتھ روتے ہیں. عزیز و روایات کے مطابق بی بی زینب نے تا آخر عمر اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. میں نے بہت روایات ڈھونڈی، کہیں لکھا ہو کسی کتاب میں کہ گھر پہنچ کے روئی ہوں. بس بی بی کی وفات صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی، خود مدینے میں بھی معمول تھا، جہاں بھی جاتی آپ کے ساتھ ایک گٹھڑی تھی، اس گٹھڑی کو کھولتی جس میں آپ کی ماں کا دیا ہوا وہ کرتا تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جس میں حسین کے خون کے نشان تھے، اسے اپنے چہرے پر رکھ لیتی اور دھاڑے مار روتی، لیکن بغیر عشق کے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.